ओम शांति। अभी हमारे बीच में है हमारे आदरणीय तुलसी भाई जी। तुलसी भाई जी जैसे मधुर में बहुत सारे गुप्त रतन होते हैं, कभी कभी स्टेज पे आते हैं, पर वो बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं करते हैं, बहुत ही यज्ञ में बाबा के दादियों के क्लोज रहे हुए हो, अनन्य बाबा के बच्चे होते हैं। तो तुलसी भाई भी ऐसे ही अनन्य बच्चे हैं। हम सभी एक बार एक हाथ की थाली से भाई साहब का अभिनंदन करेंगे। आप पिछले 45 ईयर से बाबा के बच्चे हैं और मधुबन में जितनी बार अव्यक्त बाप दादा से भाई साहब मिले हैं, क्योंकि भाई साहब की शुरू से सेवा साउंड और वीडियो में रही है, तो जितनी बार भी बाबा आते हैं, हर बार बाबा के समक्ष इतनी दृष्टि ली है, इतने महावाक्य सुने हैं और इतने गहरे गहरे अनुभव हैं भाई साहब के, तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम भाई साहब से कुछ प्रश्नोत्तर के रूप में चिट चैट करेंगे। न केवल अव्यक्त बाप दादा, पर आप दादी जो हमारी दीदी मनमोहिनी जी, आप उनके बहुत ही क्लोज रहे हैं, तो भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला मेरा प्रश्न यही होगा कि आप इतना मतलब अव्यक्त बाप दादा से इतनी बार मिले हैं ना, जब भी बाबा आते हैं, तो आपने बाबा को न केवल इन चर्म चक्षुओं से, पर जो ज्ञान का तीसरा नेत्र है उससे भी आपने अव्यक्त बाप दादा को देखा है, भगवान को देखा है, महसूस किया है, तो उसकी जो महसूसता है, चाहे निश्चय बोलो या ज्ञान जो वो देता है, वो वैसे वो अनुभूति आपकी कैसी है?
ओम शांति। इसी मंच पे जब इस प्रकार का सेशन दादी जानकी के सामने होता था, तो कभी कभी दादी जानकी बोलते थे आज मेरा एग्जाम है, क्वेश्चन आंसर पूछे जाते थे। तो पहला ही प्रश्न है अव्यक्त बाप दादा के साथ की बात है, तो आप सबने लगभग तो सभी ने अव्यक्त बाप दादा से मिलन किया होगा साकार में, जब बाप दादा ऊर्जा दादी के शरीर में आते हैं लगभग।
मोस्टली जो नए लोग हैं वैसे थोड़ा सा, पर बहुत सारे लोगों ने,
तो आप सबका ये अनुभव होगा कि गुलजार दादी उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी है और अव्यक्त बाप दादा जब आते हैं तो बहुत कुछ परिवर्तन हमको दिखाई देता है, वॉइस में, चेहरे में। स्लोली स्लोली दादी की बॉडी भी वैसी हो गई अव्यक्त बाप दादा जैसी यूँ कहें। लेकिन जब मैं शुरू में मधुबन निवासी बना 80s में या 79 में, तो दादी गुलजार और अव्यक्त बाप दादा के चेहरे में बहुत अंतर था, चाल चलन में भी बहुत अंतर था। जैसे और दादियां हैं ऐसे हमारे दादी गुलजार थे, उनका चाल चलन और अपनी रमणीकता और उनका वॉइस और खाने का तरीका, बात करने का तरीका। वैसे दादी लगभग शौकीन मिजाज के थे, इन द सेंस उनको नेचर से बहुत प्यार था, अच्छी बातें करना या कुछ ऐसे सुनना, अच्छी बातें वो भी उनको अच्छा लगता था, और भोजन में भी अलग अलग प्रकार से उनकी रुचि थी। लेकिन जब बाप दादा की पदरामणी होती थी तो कम्प्लीटली भिन्न होता था। अगर आप कभी दादी गुलजार के 80s की या 70s की फोटोज देखेंगे और अव्यक्त बाप दादा के देखेंगे, तो इतना तक आपको लगेगा कि गुलजार दादी फीमेल चेहरा है, और लेकिन जब बाप दादा आते हैं तो चेहरा में काफ़ी जैसे मेल की फीलिंग्स आते हैं, इतना तक आपको महसूस होगा अगर पुराने फोटोज देखेंगे। लेकिन स्लोली स्लोली बाप दादा की पदरामणी लंबे समय तक होना और दादी का अपना पुरुषार्थ भी, तो स्लोली स्लोली ऐसा होता गया कि दादी और बाप दादा में अंतर कम लगने लगा, लेकिन शुरू में बहुत लगता था। ऐसे ही जब दादी बैठते थे संदली पर बाप दादा की पदरामणी के लिए, तो हम जब गीत बजाते थे तो दादी पहले ट्रांस में जाते थे, तो दादी का अपना एक ओरा होता था, और ट्रांस में जाने के बाद वो ओरा में अलग फीलिंग होती थी। लेकिन जब बाप दादा की पदरामणी हो गई होती थी या बाप दादा प्रवेशता हो चुकी होती थी, तो भले बाप दादा या सफेद लाइट हो या आंखें खोलें, उससे पहले ही काफी कुछ हमें महसूस होता था। ओरा में भी, चेहरे में भी चेंज महसूस होता था, जिससे हमें लगता था कि बाप दादा आ चुके हैं। और जब बाप दादा को व्हाइट लाइट में बाबा की दृष्टि सबको मिलती थी तो सबको फीलिंग होता ही था, और वो माहौल कैसा हो जाता है आप सबने अनुभव किया है, कैसे साइलेंस हो जाती थी और कैसे सबका आकर्षण बाप दादा की तरफ हो जाता था। और जब बाप दादा बोलते थे, शुरुआत करते थे, तो उससे पहले ही बाप दादा का चेहरे पे एक प्यार का सागर, या एक तरह से कहें दाता स्वरूप का जो आंस हैं आंखों में से, आपको महसूस होता कि आंखें हमको कुछ दे रही हैं, ये महसूसता हमने होती थी हम सबको। तो उससे भी हमें पालना मिलती थी बाबा की दृष्टि से, बाबा की दृष्टि, बाप दादा के बोल, बाप दादा द्वारा दी गई टोली और टोली के समय जो वरदान, वो हम सब ने देखे। हम सब पहले तो ऐसा होता था कि एक एक व्यक्ति बाप दादा के सामने जाता था, बाप दादा उनको उनके अनुसार वरदान देते थे। और आप सब, आप में से कोई ऐसे भी होंगे जिनको पर्सनल वरदान मिले होंगे और वो आपको छप गए होंगे एकदम कि बाप दादा ने मुझे ऐसा बोला। यूँ तो बाप दादा की पूरी मुरली होती है, बाप दादा ग्रुप से भी मिलते थे और बाप दादा बाद में टोली भी देते थे, लेकिन जो बाप दादा ने हमें पर्सनल दृष्टि या बोल बोले वो हमेशा हमारे मन में छप गए होते थे। तो देन वो चीज़ें हमारे अंदर में इतनी छप गई होती थी कि जब हम बाहर भी जाएंगे या एक साल बाद भी हम वो स्मृति लाएंगे तो हमारे आंखों के सामने वो आ जाती थी। जैसे कि हमें समझो, हम आप में से कोई यहाँ बाबा से मिलके घर में भी गए तो जैसे ही बाबा की याद आ जाएगी तो वो दृष्टि, वो चेहरा, वो स्वरूप आपको याद आ जाता है और आपको लगता है कि बाबा हमें दे रहे हैं, अभी भी वरदान दे रहे हैं या अभी भी दृष्टि से हमें सकाश या शक्तियां दे रहे हैं। तो इस प्रकार की फीलिंग्स मानो अव्यक्त दबदा के साकार स्वरूप में, प्लस जब जब हम दूर हैं थोड़ा सा उस साकार मिलन से, लेकिन वो अनुभूतियाँ याद हमें छप जाती है हमारे चेहरे पे, हमारे जीवन में।
जी वैसे वैसे आपको ऐसा कभी लगा कि भगवान, मतलब भगवान की जैसे निश्चय की बाप दादा की अव्यक्त बाप दादा दृष्टि से भगवान की जैसे निश्चय
ऐसे देखिए, ये जहाँ तक निश्चय की बात है तो मैं समझता हूँ सभी पहले निश्चय होता है तभी बाबा के सामने आते हैं। बाप दादा को देखने के बाद निश्चय तो लगभग कोई कोई होगा जो परखने के लिए आया होगा और सब बाद में उनको निश्चय हो गया हो, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बाप दादा की आँखें देना की, मुझे याद है कि जो हमारा एक चित्र है अब एक बाप दादा का दृष्टि देते हुए, तो कोई कुमार आया तो मैंने उनको एक चित्र गिफ्ट किया, तो उसकी टीचर बाद में बोली कि आज बड़े बर्थडे पे आपने उनको गिफ्ट तो दे दिया लेकिन इसके परिवार में कोई ज्ञान में नहीं है, आपने उसको ये भी बोल दिया कि फ्रिज के ऊपर रखना है। लेकिन बाद में पता चला कि बहन ने सुनाया कि जब उसकी माँ उस चेहरे को देखती थी तो उसमें जो आकर्षण था, जो दृष्टि, जो आँखें, जो चेहरा, जो मुस्कान, तो उन्होंने बच्चे को पूछा आपकी दीदियाँ क्या ऐसे ही मुस्कुराती रहती हैं, तो उस बेस से वो आश्रम पे आई। तो बाप दादा का चित्र भी इतना सेवा करता है, जो चित्र से भी व्यक्ति को लगता है कि ये कोई कॉमन मनुष्य नहीं है, है ना, साधारण दृष्टिकोण वाला नहीं है, ये कोई अलौकिक हस्ती है। और उसमें भी अगर अपन किसी से भी कंपेयर करते हैं, चाहे धर्म गुरुओं से, चाहे राजनीतिज्ञों से, चाहे आज संसार में कितने संत महात्माएं हैं, कहीं भी मानो वन वे नहीं है कि बाबा आपको देना ही चाहते हैं ना। जैसे मुझे याद है बचपन में हम कहीं गुरुद्वार में जाते थे तो 5 आने देते तो वैसा प्रसाद मिलता था, सीधा वैसे प्रसाद लेते तो उतना मिलता था, और न केवल इतना ही लेकिन उनके पाँव छूते थे तो ही वैसे वरदान मिलता था या आशीर्वाद मिलता था। अदरवाइज वो पूछते थे, तुमको ये नहीं सिखाया माँ बाप ने कि पांच होने चाहिए, लेकिन कभी आपने ये बाबा के यज्ञ में सुना, दादियों से सुना, बाप दादा से सुना कि आप जाके बाबा के पांव छो तो ही वो आपको आशीर्वाद मिले। मीन्स आप डायमंड हॉल कितना बड़ा है, उसमें व्यक्ति कहाँ भी बैठा हुआ है और उसको वहाँ ऐसा लगता है कि बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। जो मन में सोच के आया होता है वो वहाँ ही उसको पूरा हो जाता है। जो अगर कोई भ्रांति भी थी तो इतना दूर हाल में बैठे हुए भी उसकी भ्रांति वो दूर हो जाती, क्योंकि बाबा जब आते हैं तो उनका जो ओरा बनता है उस हॉल में या एक दूरी पर जो एनर्जी बनती है उससे ही महसूस हो जाता है कि ये मेरे अपने हैं, मेरे अपने पिता हैं, अपनापन और दाता का स्वरूप ये हमेशा महसूस होता है। मुझे याद है कि एक बार एक्सीडेंट के बाद मुझे कुर्सी पे उठा के बाबा के सामने लाया गया, तो बाप दादा ने कुछ बोलने से पहले सिंपल ऐसे किया, मीन्स ठीक हो जैसे एक्सप्रेशन जो, तो मुझे तो बाबा ने बोला और मेरे लिए तो रोज की बात थी इस प्रकार की, लेकिन जो ऑडियंस था पीछे कम से कम 800-900 बैठे थे जिसमें कुछ विदेशी भी थे, उन सब ने ताली बजाई, सबको क्या महसूस हुआ कि एक पिता अपने बच्चे को कैसे महसूस करा रहा है कि बाबा बाबा तुम्हारे साथ है और बाप तुम्हें समझता है तुम्हारी फीलिंग्स को। तो बाबा के केवल इतना ऐसे करने में जो एक्सप्रेशन थे वो मुझे तो दिया ही दिया, लेकिन जो भी ऑडियंस बैठे थे सबको एक फीलिंग्स आई और सबको एक तरह से जो निश्चय की बात बोल रहे हैं, केवल इतना देखने वाले को भी ये निश्चय हो जाएगा कि ये साधारण हस्ती नहीं है, कोई संत महात्मा भी नहीं है, सर्वोच्च अथॉरिटी ही ऐसे कर सकता है जिसको आप हमेशा मुस्कुराते देखो कहीं भी। मानो कितनी देर भी दादी गुलजार के शरीर में बाबा आए, मानो शाम के 6-7 बजे से लेकर अगले दिन 10:30 बजे तक भी हैं, लेकिन चेहरे पर उतने ही मानो गौरवमय मुस्कान या दाता की भावना चेहरे से झलके, ये कोई भी इंसान नहीं कर सकता मैं ये कहूँगा। तो ये चीज़ें जब हम देखते हैं, आज भी मैं आपको बोलूँगा कि अगर इस प्रकार की पालना या इस प्रकार की अनुभूति आपको करनी हो तो अव्यक्त मुरली नाम से यूट्यूब चैनल हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो बल अव्यक्त मुरली तो आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन उसके बाद मुरली के बाद जो मीटिंग्स हैं बाबा के या जो पर्सनल मुलाकातें हैं या जो सेलिब्रेशंस हैं वो उसको आप देखेंगे तो आप बाबा कैसे बोलते हैं, बाबा कैसे मुस्कुरा रहे हैं, बाबा कैसे अपने समय का सदुपयोग करते हैं और कैसे दूर वालों को भी दृष्टि देते हैं, संतुष्ट करते हैं। मुझे याद है कि आई थिंक 1999 होगा या 2000 के बीच काला जो सीजन था, उस समय बाप दादा डायमंड हॉल में स्टेज से नीचे आके पूरे ऑडियंस में दृष्टि देने के लिए, क्लोजनेस की फीलिंग्स देने के लिए बाबा वॉक करके वरदान दिए थे। आप सोचिए वो भी कोई कम समय नहीं, अरे करीब आधा पौना घंटा तो लगा होगा बाबा को राउंड लगा के सबको वरदान देने में, दादी जी साथ में थे तो फुल टाइम बाबा ऐसे वरदान देते रहे। और कभी कभी मैं बहनों को ही बोलता था, हमारे टीचर्स बहनों को, या तो दादी बन के बाबा दादा का हाथ पकड़ो और अपने जिज्ञासुओं को फीलिंग दिलाओ, या तो स्वयं बाबा बन के वो जिज्ञासुओं को अपने स्टूडेंट्स को वो फीलिंग दो बाबा की, कि बाबा आपके द्वारा वो फीलिंग्स उनको मिले कि बाबा उनको दे रहे हैं। तो ये चीज़ को हमने अनुभव किया, मैं तो कर किया है, लेकिन केवल जो सुनते हैं या जो चीज़ को विजुलाइज करते हैं उनको भी निश्चय हो जाता है।
जी भाई साहब बिल्कुल, हमें भी पता है जब मधुबन निवासियों की एक बार दादी ने बाबा से मिलन था सारे मधुबन निवासियों का, तो सब लोग लाइन में जाते थे दृष्टि, तो कई बार ऐसे होता है ना कि बाबा के सामने जाके हम फूल देना चाहते हैं या कुछ ऐसे, लेकिन बाबा की वो जो आंखें होती थी ना, एकदम जैसे बहुत ही डीप आकर्षण, आप उनके सामने जाते हैं और आप सब भूल जाते हैं, एक ऐसा होता है बस बाबा मैं और बाबा, और जैसे टाइम रुक गया है, दृष्टि केवल और जो कुछ संकल्प आ रहा है, जो संकल्प था उसको जैसे मिल जाता है। तो ये न केवल हमारा, पर जो बाबा से सच में बोलते हैं ना कनेक्ट होते हैं, उन सबको ये अनुभूति होती है। और डायमंड हॉल की स्टेज पे तो न केवल बीके पर बीआईपी, बहुत बड़े साइंटिस्ट, एक्टर्स, ये सब आए हैं, उन लोगों ने भी ये हमेशा बोला है कि बाबा की जो दृष्टि थी वो आउट ऑफ वर्ल्ड उसी हिसाब से। थैंक यू भाई साहब। नेक्स्ट, आप जैसे दीदी के साथ, आप दीदी के बहुत क्लोज रहे हैं, तो दीदी तो एक माता थी, यज्ञ में एज ए माता आई थी, पर दादी और दीदी की जोड़ी बहुत फेमस है। माता होके भी वो यज्ञ के इतने स्ट्रांग पिलर, बाबा के राइट हैंड, ऐसी उनकी क्या विशेषता थी भाई साहब? आप उनके क्लोज रहे हैं, ऐसा क्या देखा जो माता?
एक्चुअली जब माता और कुमारी की बात आती है तो कई बातों में तो माताओं को तो बल्कि प्लस पॉइंट रहता है, इन द सेंस एक तो डर कम हो जाता है माताओं को स्वयं के मन, और कुमारियों को जितना डर होता है माताओं को कम डर होता है, और जीवन में अनुभव भी होते हैं बहुत कुछ, जिन्हों अनुभवों को भी साथ लेके चलते हैं तो डगमग होने की जो चांसेस हैं कम होते हैं, मैं समझता हूँ। और दीदी तो पहले ही लौकिक से ही कुछ इस प्रकार के परिवार के थे, न केवल धनी थे परंतु उनके जो ससुराल साइड से थे वो मुखिया थे, है ना, तो मुखियाओं में तो एक तरह से वो होता है एडमिन करने का,
लीडरशिप
संस्कार, लीडरशिप करने का संस्कार होता है। और दीदी को जब से बाबा की सच्ची पहचान मिल गई तो उस निश्चय का नशा भी था और बोल्ड भी थी दीदी, तो जब से हुआ तो सात आलों से, जिसको कहते हैं सात आलों में बंद कर रखा और वो फिर भी बाबा के सामने आ जाए, जो शास्त्रों में गायन है वो दीदी को कह सकते हैं। तो दीदी जब से यज्ञ में आई तो जो भी कार्यों में बाधा आ रही थी, समझो कुछ भाई बहन, कुछ माताओं को बहनों को यज्ञ में आश्रम में आने के लिए मुश्किल हो रहा था कि ये दादा के पास जाती हैं, तो दीदी ने उस समय भी एक तरीका ढूंढा सिलाई क्लास शुरू करने का, कि जो आते हैं वो ये नहीं लगे कि हम दादा के पास या ब्रह्मा बाबा के पास जा रहे हैं, लेकिन वो सिलाई सीखने के लिए जा रहे हैं, ऐसा महसूस होता था उनके परिवार वालों को। और सच में सिलाई तो सीखते ही थे, और लेकिन जब सिलाई सीखने जाते थे तो वहाँ भी बाबा की बातें करते थे, मुरली को रिवाइज करते थे, सुनते थे। तो एक तरीके कैसे ढूंढें वो दीदी की विशेषता थी, कैसे हम बाबा के नज़दीक आएं, और क्योंकि दीदी को स्वयं अच्छे अच्छे अनुभव थे बाबा के, मानो कभी भी मतलब अगर जैसे हिस्ट्री हॉल में दीदी योग करा रहे हैं और वहाँ से पास भी होंगे ना आप और दीदी के चेहरे को देखेंगे तो आपको लगेगा मैं भी सामने बैठ जाऊँ, क्योंकि दीदी योग में या बाबा के प्यार में इतनी खोई हुई महसूस होती थी कि आपको लगता था मैं यहाँ क्यों आ कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, आप भी वहाँ बैठ जाएंगे। तो माता होने का उन्होंने एक तरह से एडवांटेज कहो या प्लस पॉइंट कहो उन्होंने यूज़ किया, और सभी को दीदी पालना देने में, क्योंकि एक माता है तो किसी लड़के को भी पालना दे सकती है, बच्चे को भी पालना दे सकती है, बहन कुमारियों को भी पालना दे सकती है, माताओं को भी पालना दे सकती है, तो दीदी को सखी बनाने का बहुत अच्छा हुनर था। किसी को भी आप एक बार मिलेंगे ना दीदी को तो दीदी आपसे इस प्रकार से बात करेंगी, माताओं से बहनों से, कि वो उनको ऐसा लगेगा कि मेरी फ्रेंड है, मानो ऐसी दीदी कहते हैं, सब लोग ये कहते हैं कि दीदी बहुत मानो स्ट्रिक्ट थी, लेकिन दीदी प्यार देने में, अपने फ्रेंड बनाने में भी इतना ही होशियार थी, और एक बार जो दीदी के फ्रेंड बन जाते तो हर बात दीदी को ओपनली बात कर पाते, और सच्चाई से बात करने के कारण उनको दीदी तरीके भी ऐसे बताते जो उनको सूट होते हों, और वो भी निर्बंधन हो बाबा की सेवा में आगे आने के तरीके ले पाते थे। तो इस प्रकार से दीदी ने माता होते हुए माताओं बहनों भाइयों सबकी पालना की, ऑफ कोर्स माताओं को और ज्यादा दे पाती थी। जब दीदी सौगात देते थे तो श्री कृष्ण का चित्र होता था ना, तो जैसे दीदी बोलते थे नहीं नहीं ये तो मेरा लड़का है, मेरा बच्चा है, मेरा मिच्छिनु है, हैं इस प्रकार से एक्टिंग करके इस प्रकार के बताएंगे। माताएं कहेंगी नहीं नहीं हमारा है कि ये मिच्छिनु तो हमारा है, दीदी कहेंगी ये नहीं नहीं मेरा है। इस प्रकार से एक सिंपल सौगात देते समय भी दीदी का जो रमणीक तरीका होता था वो सबको आकर्षण करने वाला था।
आप लोगों ने दीदी का फोटो देखा है, दीदी मनमोहिनी का? हाँ, तो यज्ञ के बड़ी दादी के साथ, दादी प्रकाश मणि जी के साथ, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेवाएं सारी प्रशासनिक सेवाएं देखते थे।
साकार बाबा के समय में अधिकतर बाप दादा कई बातें भाई बहनों की मामा के बाद दीदी को ही शेयर करते थे, बल्कि दीदी के साथ ज्यादा शेयर करते थे, मामा से भी कुछ बातें। तो दीदी मानो इजी थे बाबा के साथ भी और भाई बहनों के साथ भी इजी थे, तो उनको एक तरह से ब्रिज का काम करते थे बाबा और भाई बहनों के बीच में, और ताकि कई बातें होती हैं जो साकर बाबा के सामने या मामा के सामने भाई बहन हेजिटेट करते हों, थोड़ा संकोच करते हों, लेकिन वो दीदी के सामने बात कर भी पाते थे और बाबा की जो डायरेक्शन उसके प्रति क्या है और दीदी उनको पूछ करके बताते भी थे। तो एक मीडिएटर का काम दीदी का अच्छा रहा।
भाई साहब, बड़ी दादी दादी प्रकाश मणि जी और दीदी, उनकी दोस्ती मतलब सब लोग उदाहरण देते हैं, उनकी आपस में ये ऐसी कैसी विशेषता थी? क्योंकि सामने दीदी दादी होती थी और दीदी बैकग्राउंड में, लेकिन फिर भी उनकी अंडरस्टैंडिंग।
वैसे तो देखो जो दादियां हैं हमारी वो सब अपने आप में तृप्त हैं, तृप्त रही साकार बाबा से या अवेक बाबा, अपने अवेक बाबा दादा से, पहले शिव बाबा से, उन्होंने इतना प्यार पाया वो अपने आप में तृप्त रहे। मोस्टली जो थोड़ा सा फ्रिक्शन होता है वो तब होता है जब एक व्यक्ति प्यासा होता है या उसको लगता है मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए या मैं कमांडिंग में आऊँ या मेरा प्रभुत्व ज़्यादा हो। लेकिन बाबा के यज्ञ में विशेष रूप से दादियों के लिए उदाहरण दिया जाए तो किसी भी दादी को ये नहीं रहा कि मेरा प्रभुत्व होना चाहिए या मैं प्रत्यक्ष हूँ या लोग मुझे पहचाने। अपने को आगे करने के लिए किसी भी दादी को हमने नहीं देखा है। सभी दादियों के बीच में जहाँ अभी दीदी और दादी की बात चल रही है, तो एडमिन में दादी थे और दीदी थे। मोस्टली दीदी इंटरनल हम बातें देखते थे और जो दादी थी ऑफिस वर्क देखते थे, लेकिन आपस में उनका इतना ही स्नेह था कि जैसे एक ही सांचे में डले होते ना, तो एक से पूछ तो ओपिनियन लेंगे, थोड़ी देर बाद दूसरे से ओपिनियन लेंगे, तो लगभग वही होता था। केवल फिर भी थोड़ा सा मैनेजमेंट को बनाए रखने के लिए जो दादी थे वो ऑफिस वर्क या जो एक्सटर्नल गवर्नमेंट के संबंधित कारोबार वो दादी के ऊपर था, और दीदी की थी जो घरेलू पालना देने के संस्कार इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन वो दीदी का था। ऐसे ही आबू रोड से जो दिल्ली साइड में ट्रेनें जाती थी या दिल्ली साइड में जो सेंटर्स थे उनका व्यवस्था करने के लिए दीदी मनमोहिनी को निमित्त बनाया गया, और इस साइड में अहमदाबाद बॉम्बे साइड में जो सेंटर्स थे उनका एडमिन का कारोबार दादी के ऊपर रखा गया। तो इस कारण से जो भी करते थे मोस्टली आपस में पूछ के करते थे, या मैंने जैसे कहा कि एक ही सांचे में डले थे तो लगभग ओपिनियन दोनों का एक ही होता था, तो इसलिए आपस में प्यार भी था। और फिर भी कुछ ऐसी बात होगी तो मान लो मैं पूछता हूँ तो बोलेगी दादी, बोलेगी दीदी के पास जाओ, दीदी बोलेगी दादी के पास जाओ, तब तक वो आपस में भी इशारों से बातें कर लेते थे, तो इसलिए उनका प्यार भी बना रहता था। और हम सबको ऐसे लगता था कि दादी से पूछा तो दीदी से पूछा लगभग एक जैसा ही है, फिर भी हमें जिस संबंधित डिपार्टमेंट है हमारा उनसे फिर भी कंफर्म करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से दीदी दादी का आपस में प्यार था, और जैसे मैंने बताया कि किसी को भी ये नहीं था कि मैं डोर मेरी तरफ खींचूं, ऐसा नहीं था। दोनों की देने की भावना, दातापन की भावना थी
जी। अच्छा, बड़ी दादी को, दादी प्रकाशमणि को किस किस ने देखा है? हैं, कुछ हैं तो भाई साहब, देखो कुछ लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने दादी प्रकाशमणि को देखा है और हम लोगों ने पालना लिए। तो दादी एक हेड ऑफ ब्रह्मा कुमारी तो थी हमेशा, पर उससे हमेशा फीलिंग कैसे होती थी? एक माँ की फीलिंग, ममतामय फीलिंग। आप उनके सामने, मतलब कभी भी जाओ, मैं तो बहुत छोटा था, पर जैसे एक होता है ना, उन्होंने देखा, उनकी मुस्कुराहट, उनका बात करने का तरीका एकदम ममतामय, ममतामय रूप तो हम सब ने देखा है भाई सब। क्या दादी कभी उनका शक्ति स्वरूप आपने, मतलब उसका, हाँ, कभी किसी पे दादी ने गुस्सा किया हो, कभी कुछ ऐसे?
ऐसा है कि जितने भी मधुबन में आते हैं, सेंटरों पे तो दीदियाँ आपको स्ट्रांग डायरेक्शन देती हैं, मुरली में भी कई बातें आती हैं जो आपको धारणा के लिए प्रेरणाएं देती हैं, और कभी कभी साकार मुरली में शब्द भी इस प्रकार के होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, जो आपको धारणा के लिए माने प्रेरणा देते हैं। और दीदियाँ भी आपको मधुबन लाने से पहले कई कुछ बता के लाती हैं और शिक्षाएं तो मिलती रहती हैं। लेकिन मधुबन एक ऐसी जगह है जहाँ हर एक को लगता है कि मैं जैसे घर जा रहा हूँ, या कई बार दीदी दादियाँ मैं शब्द यूज़ करती थी टीचर्स के लिए कि ये पियर घर है। तो मधुबन तो है ही पालना देने वाला, प्यार देने का स्थान, और उसमें भी अगर दादी हेड है तो प्यार देना उनका, वो समझते हमारा फर्ज भी है। अगर मैं भी प्यार नहीं दूंगी तो कौन देगा? क्योंकि साकार में तो मैं तो ये महसूस किया कि भले बाबा हैं, बाबा ही यज्ञ चला रहा है, लेकिन दादियाँ निमित्त तो थी, दादी प्रकाशमणि तो विशेष रूप से निमित्त थी। तो कभी कभी तो हमें ये महसूस होता ही था, कभी क्या मोस्टली ये महसूस होता था कि बाबा ने जो कहा वो दादी ने कहा, दादी ने जो कहा वो बाबा ने कहा। तो बाबा प्यार का सागर है तो दादियाँ भी प्यार के सागर रही, दादी प्रकाशमणि हमेशा प्यार देती रही है। लेकिन ये प्यार हमारा यहाँ अलौकिक प्यार है ना, कोई होता है ना जैसे माँ, मोह वाली माँ, ऐसा तो नहीं है। तो अगर हम मोह वाला प्यार हमें दादी देते तो हम बिगड़ भी जाते थे शायद, लेकिन दादियों ने हमें प्यार भी दिया लेकिन स्ट्रांग भी बनाया। जो कई बार हम सुनते हैं ना कि अभी दादियों को मिस कर रहे हैं या बाबा आए नहीं उनको मिस कर रहे हैं, तो इन दादियों ने हमें प्यार भी दिया, हमें स्ट्रांग भी बनाया कि कहीं भी हम मर्यादा में विचलित ना हों, या छोटी मोटी बातों में विचलित न हों, या परिस्थितियों के समय हम विचलित न हों। तो जैसे भी हमें दादियाँ देखती थी कि कहीं हम हिल रहे हैं, या कहीं हमारे अंदर कुछ ऐसी कन्फ्यूजन चल रही, या दो मत हो रहे हैं आपस में, तो दादियाँ बुला के हमें इशारा भी देते हैं। इन द सेंस, मान लो हम दो भाइयों के बीच में कोई बात में फ्रिक्शन है, तो दोनों को मिला, दोनों को साथ में बुला के बात करते और पूछते, और बाद में हम दोनों एक मत होके ही वहाँ से बाहर निकलते। या कभी एक व्यक्ति को कुछ ऐसी बात देनी है तो दादी में विशेषता थी कि जिस दादी कोई बात करने के लिए जैसे आह्वान करते हैं, तो जैसे शक्तियों का आह्वान करते हैं, तो विशेषता थी, हम कई बार दादी को देखते थे कि दादी आप बैठ के तो योग नहीं करते हैं, फिर भी आप योगी योगिन है, ऐसा महसूस होता है। तो मान लो मैं मिलने गया तो मेरे से मिलने से पहले, मेरी बात शुरू होने से पहले कुछ सेकंड, 30 सेकंड, एक मिनट दादी जैसे बाबा का आह्वान करती या कोई शक्ति का आह्वान करती, तो हमें भी महसूस हो जाता कि अभी जो मेरी बात आने वाली है उसमें दादी का निर्णय क्या होगा या क्या होगा, तो दादी के चेहरे भी वैसा हो जाता था। तो दादी अलग अलग समय पे अलग अलग शक्ति का जैसे आह्वान करके वो हमें शिक्षा देती। तो शब्द भले वही होते थे लेकिन शब्दों में जो पावर भरा होता था, तो हमें लगता था कि जैसे आज दादी का ऑफिशियल रूप है। तो हम ये नहीं कहते थे कि दादी ने हमें डांटा, लेकिन दादी शिक्षाएं दी या दादी ने आज इस प्रकार से मेरे को पावरफुल बनाया, स्ट्रांग शब्द यूज किए, वो महसूस तो होता था। तो हमें ये भी नहीं, ये नहीं लगता था कि दादी ने हमारे साथ गलत सलूट किया या कोई धर्मराज का रूप धारण किया या सबके सामने कुछ इस प्रकार का बोला, लेकिन जो दादी के नेत्र होते थे उस समय वो शक्ति हमें भर देते थे, या यूँ कहें उनके जो शब्द थे वो हमें स्ट्रांग बनाने के लिए थे। तो जिससे वैसे भी जिससे प्यार होता है तो उनकी कभी डांट भी हमें को डांट नहीं लगती ना, ऐसा लगता है शिक्षा दिए हैं। तो दादी से हमारा प्यार तो बहुत रहा है, मैं कहूँगा जितना बाबा से प्यार था उतना ही हमें दादी से भी प्यार था।
वैसे भी ये दुनिया में मतलब एक अपवाद है क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता, पर मोस्ट ऑफ मधुबन निवासी आज दादी को याद करते हैं, उनके प्रशासन को याद करते हैं, और दादी के बारे में मतलब ये विश्व विख्यात है कि अगर दादी का संकल्प है ये चीज करनी है तो सारे मधुबन निवासी उसमें जैसे जुड़ जाते थे, भिड़ जाते थे, लग जाते थे ऐसा। तो ये जो कमांड दादी की,
देखिए पहले मैंने बोला कि दादियां पहले अपने आप में तृप्त थी, और जो दीदी दादी के समय में जो समर्पण हुए हैं वो भी लगभग उसी सांचे में ही डले हुए हैं। जब हम आए हैं तो हम यही कि हमारा जीवन पूरा बाबा के लिए है, जीना मरना बाबा के लिए, या यज्ञ के लिए यूँ कहेंगे, संस्था के लिए शब्द अगर बाहर वालों से हम बात कर रहे हैं तो यज्ञ के लिए ही हमारा जीवन है। तो दादियाँ उसके लिए कमांडिंग लीडर है, नहीं कैसे जैसे मुरली में आता है ना कि मधुमक्खियों के जो झुंड होता है उसमें भी एक क्वीन होते हैं ना, ऐसे आता है मुरली में। तो सिमिलरली हमारे यज्ञ में हमारे ये दादी या दीदी एक तरह से वो मधुमक्खियों की क्वीन की तरह थे, जो दादी चाहते थे या दादी को संकल्प आता था या दादी को प्रेरणा आती थी हम उसमें अपनी सहमति स्वतः ही जताते थे या सपोर्ट करते थे। जैसे समझो दादी को अचानक मन में आया कि अनाज बाहर रखा है और कहीं बारिश ना आ जाए, शांति स्तंभ पे हम लोग पहले क्या होता था, गेहूं आता था तो हम सुखाते थे उसको शांति स्तंभ पे, अचानक दादी को लगता है कि नहीं ये गेहूं अभी अंदर होना चाहिए, तो दादी जैसे ही इशारा दिया तो हम सभी गेहूं को उठाने में लग जाते थे ना। तो ऐसा नहीं कि उस समय मजदूर होते थे, हम आपस में सब काम मिलके ही करते थे, और दादी का कहना या दादी की इच्छा या दादी का एक तरह से संकल्प करना ही हमारे लिए एक तरह से डायरेक्शन होता था। हमें दादी बोले या कोई स्ट्रांग शब्दों में बोले ऐसा कभी जरूरत नहीं पड़ी, दादी ने चाहा और दादी ने कहा और दादी ने किया। यहाँ तक कि दादी के जो संकल्प होते थे तो दादी के संकल्प सिद्ध होते थे भले हम लोगों के थ्रू ही होते थे, तो कई बार वो बात किया है वो इतना भी दादी बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। समझो कहीं कोई सेवा केंद्रों पे कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं और दादी कहेंगी यज्ञ में कुछ बातें हैं, आज हम रात भर योग करेंगे मधुबन निवासी, और हम रात भर योग करते थे तो हम दादी से कभी पूछते नहीं थे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, और एक दो दिन बाद दादी बोले कि जिस समय आपने जो योग किया उसका रिजल्ट आया और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो दादी ने केवल संकल्प किया, दादी ने हमें कोई डिटेल नहीं बताई कि ये प्रॉब्लम आई है, लेकिन दादी के संकल्प के आधार पर हम लोग केवल योग ही किए, बाबा को ही याद किए रात भर, तो उससे वो बातें सॉल्व हो जाती थी। तो इस प्रकार के जो संकल्प से सिद्धि शब्द है वो दादी के लिए हम कह सकते हैं, दादी ने संकल्प किया और वो प्रैक्टिकल में आया और उसका रिजल्ट भी सामने आया। इस प्रकार से कई बार हम लोग रात भर योग करते थे या विशेष योग भट्टियाँ रखते थे केवल इसलिए कि यज्ञ में कहीं बात आई है और दादी का संकल्प है ये योग से ही सिद्ध होगा, तो उसको हम प्रैक्टिकल में लाते थे।
भाई सब योग की बात चली तो दादी स्वस्थिति के लिए जैसे पहले मधुबन में भट्टियाँ मधुबन वालों के लिए भी होती थी, हम भी आए तो देखा उस समय पे 8 दिन का होता था
जी।
आप लोग तो 80s में, तो उस समय जैसे ये सब लोग भट्टी के लिए आए हैं इनका शेड्यूल है, उस समय आपका क्या शेड्यूल होता था, कैसा माहौल होता था, भट्टी की रूपरेखा क्या होती थी?
एक्चुअली आज के समय जो जो चल रहा है युग, उसमें चाहे छोटा हो, बड़ा हो, नया हो, पुराना हो, ज्ञान में भी नया आता है, तो एक संस्कार है बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के। हमारे समय में वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के संस्कार नहीं थे। मान लो मैं अपना ही बात बताऊं, तो मान लो अगर मुझे आज भोजन नहीं करना तो मैं ये नहीं पूछूंगा आज खाना क्या बना है, जब भोजन करना ही नहीं तो खाना क्या बना है पूछने की मीनिंग नहीं है। लेकिन इन्फॉर्मेशन इतनी आजकल संस्कार हो गया है कि भोजन नहीं करना है, लेकिन शांति वाला सोचेगा पांडवपन में क्या बना है पता करो। वो पता करने वाली जो बातें हैं या यज्ञ में वो भाई क्या बोलते हैं, सूरज भाई क्या बोलते हैं या फलाना भाई क्या बोलते हैं इस विषय पे, उनसे भी पूछो वही बात, फिर दूसरे से भी पूछो। जो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करने का जो संस्कार है वो उस समय जब हम बाबा के बने हैं या जब हम यज्ञ में आए हैं उस समय इतना नहीं था। इस कारण से क्या होता था कि हमें अपनी बुद्धि को कंसंट्रेट करना सहज होता था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कलेक्शन हमारे बुद्धि में होता नहीं था, और हमें ये नहीं बताया जाता था कि कमेंट्री करने की भी वास्तव में जरूरत नहीं पड़ती थी। कभी कभी दादी आधा घंटे में एक दो मिनट हिंट दे देते थे कि अभी हम बाप दादा की अव्यक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे या अभी हम विघ्न विनाशक स्थिति का अनुभव करेंगे। तो मैक्सिमम इतना ही होता था कि दादी हमें योग शुरू होने से पहले या बीच में एक दो बार, अगर लंबी बैठी है तो आधा घंटे में या पौना घंटे में एक बार कुछ हिंट दे दे। या कई बार मानो ऐसा होता था कि जो भट्टी की टॉपिक्स होते थे वो कहीं कागज पे चिपका दिए जाते थे गेट पे एंट्री पे, और हम इतना से पढ़ के आते थे और हम उसमें खो जाते थे, उस चीज़ का हम स्वरूप बन जाते थे। तो एक तो मैं कहूँगा हमारे और बातों में बुद्धि नहीं जाती थी, बाबा मना बाबा, बाबा को याद करना है तो बाबा को ही याद करना है, और बहुत लोगों से हमारे संबंध भी नहीं थे, धीरे धीरे संबंधों को भी हमने समेट लिया था लौकिक से, अलौकिक में भी ज़्यादा विस्तार हमारे पास हमारे लिए नहीं था। दादियाँ भले जिनमें जिनको जानती थी दादियाँ अपने अनुसार उनको डायरेक्शन देती थी, कभी कभी हमको कहीं बात करने के लिए दादियाँ बिजी हैं तो दादियाँ बोलती थी अच्छा आप लोग इनसे बात करो, कुमार आए तो कुमारों से कुछ सीखो बात करो, लेकिन बहुत विस्तार में हम लोग नहीं जाते थे। तो बाबा के ऊपर बुद्धि को कंसंट्रेट करना बहुत सहज हो जाता था हमारे लिए। और मान लो तीन तीन दिन भट्टी चलती थी, मुझे याद है एक बार योग भवन में भट्टी रखे थे तो योग भवन में ही हम लोग सारा दिन रहते थे। पांडव भवन के से सट के एक बिल्डिंग है योग भवन, छोटा सा भवन है, तो हम 15-20 जने वहाँ रहे, तो उनको पांडव भवन की तरफ आने का अलाउड नहीं है, वहीं योग करना है। ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तवाणी के बुक्स या मुरली के कुछ बुक्स हो जो नोट्स होते थे वही हम लोग पढ़ते थे, या तो हम लेकिन किसी से बात नहीं करना है, फुल मौन में रहना है। इवन वॉकिंग भी जाना है तो हमको देलवारा साइड जाना है, जो भट्टी में नहीं है वो देलवारा साइड वॉक नहीं करेंगे ताकि हमारा उनसे इंटरेक्शन नहीं हो। तो सबको इस प्रकार से अच्छे अनुभव भी होते थे और हुए भी, और जिन्होंने कोई कोई ऐसे होंगे जीवन में पहली बार 3 दिन तक मुख से बोला नहीं हो, ऐसा हुआ और बहुत कुछ परिवर्तन उस चीज़ में आया। तो एक तरह से हमारी भावनाएं और भावना के आधार पर बाबा से प्यार और प्यार का रिटर्न बाबा के द्वारा हमारे में जो शक्तियां भरी जाती हैं वो चीज़ का अनुभव हमें होता था।
ठीक है सर। भाई सब बड़ी दादी, दीदी, जानकी दादी, ये सब बाबा के घर में अनमोल रतन है दादियों का, लेकिन कोई ऐसे भाई जैसे दादा या सीनियर भाई जिनके साथ आपका इंटरेक्शन हुआ हो और उनकी ऐसी विशेषता जिनसे आप सीखे हों और वो विशेषता आज भी आपको एज ए पुरुषार्थी आपको मदद करती हो?
दादियों के अलावा भाइयों की जब शब्द आते हैं तो हमारे लिए दादाएं भी थे, नहीं जैसे विश्व रतन दादा की विशेषता थी आत्मिक दृष्टि, जब भी वो हमारे से मिलते थे, क्लास कराएंगे सेवादारियों का या निवासियों का या तो भाई बहनों का, तो उनका एक ही एक पक्का होता था आत्मिक दृष्टि, उनका यह होता था कि इससे नीचे देखने की आवश्यकता ही नहीं है, है ना। आत्मिक दृष्टि को पक्का करते जाओ, नैनों से रूहानियत फैलाओ या रूहानी दृष्टि से देखो, तो उनकी विशेषता थी आत्मिक दृष्टि का बढ़ाने की। और वो मोस्टली कम ही बात करते थे, कभी भी ज़्यादा बाह्य मुक्ता में नहीं आते थे, अंतर्मुखी रहते थे। जिन बहनों का उनके साथ अकाउंट के हिसाब से कनेक्शन था वो उनको जानते थे। दादा उसी समय के आए हुए दादा आनंद किशोर थे, लेकिन बहुत अंतर होता, दादा बहुत लाइव थे। कभी भी उनके चेहरे पे उनके मनोम साधारण चेहरा नहीं देखा हमने, हमेशा उमंग उत्साह में दादा को देखा। कितनी भी यज्ञ में बातें आई, हालांकि जो गवर्नमेंट के साथ कोरेस्पोंडेंट करना होता था वो दादा करते थे, निर्जय भाई साहब आने से पहले भी, बाद में निर्जय भाई भी साथ में हो गए, तो दादा आनंद किशोर हमेशा उमंग उत्साह में रहते थे। कोई भी बात को वो बहुत सीरियस बात को भी ऐसे लाइव इजी रूप में आपको बात करेंगे जैसे बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो दादा आनंद किशोर की विशेषता ये थी कि हर चीज़ को लाइट लेना, जो योग करना है वो भी इजी रीति से करना, मनो ऐसे नहीं मौन में चले गए या तो गुमसुम हो गए, ऐसा नहीं। उनके चेहरे से झलकना चाहिए कि हम बाबा का से हमारा कनेक्शन जुड़ा है, हमारे चेहरे से भी रौनक आनी चाहिए। तो रौनक चेहरे पे या हमेशा उमंग उत्साह में देखा हमने दादा को। गवर्नमेंट की तरफ से कितनी बातें आएंगी, लेकिन वो ऑफिसर्स भी आएंगे तो उनके साथ भी ऐसे हंस के बात करेंगे जैसे कोई बड़ा मैटर नहीं है, ये तो सिंपल है ना, इसमें क्या। तो ये दादा आनंद किशोर की विशेषता रही। और हमारे दादा चंद्रास थे, वो मोस्टली बाबा के सहयोगी रहे कंस्ट्रक्शन में भी, और साकार बाबा की जो वाणियाँ थी वो उनको रिपीट करते, उनको संभाल के रखते थे। उसमें से कभी कभी हमारा ऑफिस साथ में था तो कभी कभी कोई ऐसी साकार मूल्य में बात आएगी तो सुनाते थे हमें कि बाबा देखो कैसे रमणीक तरीके से बात कर रहे हैं। या कभी सुनाते थे कि बाबा को मालिश करते थे तो बाबा कहते थे मैं तो हुसैन के घोड़े की मालिश कर रहा हूँ, बाबा आप निश्चिंत हो जाओ, मैं तो शिव बाबा के घोड़े की मालिश कर रहा हूँ ना, आपको क्या क्यों डिस्टर्ब हो रहा हूँ। या तो बाबा को कभी नहलाते थे तो सब बोलते थे कि मुझे महसूस हो रहा है कि मैं शिव के ऊपर लोटी चढ़ा रहा हूँ। तो इस प्रकार से दादा की चंद्रास की जो साकार बाबा की मालिश करते थे, साकार बाबा के रिकॉर्डिंग वगैरह का ध्यान रखते थे, तो वो अपने अनुभवों से हमें लाभान्वित करते थे, जिससे हमें महसूस होता था कि हम भी जैसे साकार के साथ में पालन ले रहे हैं, बाबा के महावाक्यों को अपने जीवन में ला रहे हैं, या बाबा की आवाज़ को अंडरस्टैंड करना दादा चंद्रास के सहयोग से हमने सीखा या देखा। तो इस प्रकार से सभी भाइयों से भी हमने अलग अलग, इतना ही कि साकार बाबा ऑल इन वन थे। दादियों में मोस्टली हर एक में हर विशेषता थी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ विशेषताएँ किसी में ज़्यादा थी किसी में कम। साकार जो भाइयों के में भी अलग अलग विशेषताएं थी, उनकी उन विशेषताओं को हमने जीवन में लाया और उनसे प्रेरणाएं ली।
थैंक यू भाई साहब। भाई साहब आपने मोस्टली हर दादी का इंटरव्यू किया है, वीडियो इंटरव्यू ऑडियो भी, और आज भी आप जैसे देखेंगे यूट्यूब पे भाई साहब का अव्यक्त मूल्यस का जैसे चैनल है, सारा अपलोड करना पुराना जो क्लासेस होते हैं उसको मेंटेन करना तुलसी भाई करते हैं। तो भाई साहब ऐसा कुछ शॉर्ट में हमें बताइए, जैसे आपने किसी भी दादी का, चाहे चंद्रमणि दादी हो, कुलजार दादी हो, कोई विशेष आपको व्यक्तिगत अनुभव हुआ हो ऐसा
किसी तो भी दादी का। कनेक्शन हमारा दादी प्रकाश मणि से रहा, फिर भी जैसे भैया ने बोला कि इंटरव्यूज वगैरह लेने में दादियों से, और सब दादियों की एक विशेषता रही कि सभी का मुरली से बहुत प्यार रहा। कोई भी दादी के पास आप जाएंगे तो जहाँ बैठे होंगे साथ में आसपास में वो उनके मुरली जरूर मिलेगी। जब भी टाइम मिला, बीच में गैप हुआ तो मुरली उठा के पढ़ ली, कहीं से भी पढ़े आधे पेज में से कहीं भी मुरली, तो मुरली से सबका प्यार रहा। जहाँ तक कि दादी चंद्रमणि से अगर कहें तो दादी के बोल जो होते थे वो अथॉरिटी वाले होते थे, दादी चंद्रमणि। और इसी यही शायद यही विशेषता के आधार पर उनका प्यार और शब्दों में अपनापन, लेकिन अथॉरिटी वाला अपनापन, जैसे आपको वो जैसे आज्ञा दे रहे हैं कि आपको ये करना है ना, तो प्यार से, इतनी प्यार से, और लेकिन आज्ञा होती थी तो सामने वाला व्यक्ति वो करना शुरू कर देता था। तो दादी जैसे गुरुकुल में कोई बोलते हैं तुमको ऐसे करना है या तुम जाके ये करो, तो गुरु की आज्ञा सिरमा थे। तो दादी के शब्दों में ऐसा होता था कि दादी बाकी बातों में कोई जाता ही नहीं था, दादी ने कहा है माना करना शुरू कर देता था। ये दादी चंद्रमणि के शब्दों में हमने पाया, जो इंटरव्यूज में इंटरव्यूज लिए उनमें हमने पाया कि दादी जब यज्ञ शुरू हुआ तो जो कई छोटे छोटे बच्चे भी आए, तो दादी टीचर थे तो दादी पढ़ाते थे, गणित पढ़ाते थे, हिंदी पढ़ाते थे, इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ाते थे, इंग्लिश की टीचर एक दूसरी दादी थे उनकी विशेषता इंग्लिश की थी तो वो इंग्लिश भी पढ़ाते थे, लेकिन टोटल जिम्मेवारी दादी चंद्रमणि जी एज ए हेड थी। तो दादी डिसाइड करते थे कौन से बच्चों को कौन सी टीचर कब पढ़ाए और कैसे उनकी शारीरिक ग्रोथ भी हो, उनकी मानसिक ग्रोथ भी हो, लेकिन संसारिक ज्ञान से भी वो अनभिज्ञ रहें। तो जैसे गुलजार दादी, लच्छू दादी, ईशु दादी, ये उसमें जैसे उनके स्कूल के बच्चे थे और दादी चंद्रमणि टीचर थे। तो जो टीचर का और जैसे जैसे आज्ञा करने का संस्कार दादी चंद्रमणि में था, और उसी के कारण ही दादी की अपनी धारणाएं भी ऊंची थी, लेकिन दादी के जो पालना में रहे, जिन्होंने दादी चंद्रमणि की पालना ली, उनकी प्योरिटी की या तो आज्ञाकारिता की एक तरह से संस्कार ऑटोमेटिक बन गया। ये दादी चंद्रमणि में हमने देखा, और जैसे और दादियों के भी इंटरव्यूज लिए तो हमने सब में ये तो देखा कि बाबा में सबका विश्वास निश्चय और बाबा ने जो कहा किया, लेकिन आपने सुना होगा यज्ञ में दादी निर्मल चंदा को जब कुछ बीमारी आई और दादी के लिए मैसेज आया कि इसको बर्फ के पानी से नहलाना है, तो ठंडी का मौसम और मैसेज आया कि इसको अस्थमा है और इसका इलाज यही है कि इसको बर्फ के पानी से नहलाया जाए। तो हालांकि साकार में वो लौकिक पुत्री थे ब्रह्मा बाबा के, लेकिन फिर भी बाबा का मैसेज आया है तो पालन करना ही है। और ये कहा गया कि बर्फ का पानी मतलब बर्फ डाल के पानी तैयार किया जाए, और जो संदेश लेके आई है बहन वो ही दादी को नहलाएगी। तो जब दादी रेडी हो गई और बर्फ जो संदेश है वो भी जब रेडी हो गई, तो वो उस समय पानी के लिए मग में लेते ही वो ट्रांस में चली गई और वो बात वहाँ पूरी हो गई। तो ऑफकोर्स उन्होंने दादी को कोई नहलाया नहीं, नहलाने तक बात आए नहीं, लेकिन जो बाबा परीक्षा लेने की बात कहते हैं या निश्चय की परीक्षा लेते रहे बाबा सबसे, तो इस चीज में भले दीदी दादी निर्मल चंदा अपने आप में मनो परिवार में भी बड़े थे और यहाँ यज्ञ में भी उनमें काफ़ी कलाएं थी, यज्ञ में बहुत उन्होंने अपने कलाएं दिखाई भी हैं। इन द सेंस वो गाड़ी रिपेयर कर सकते थे, गाड़ी चला सकते थे, इवन उन्होंने बाबा के लिए चप्पल भी सिलाई किया, तैयारी किया, ऐसे कई काम में उनको महारता भी हासिल थी, लेकिन जो बाबा ने कहा है तो हम तैयार हैं, तो बर्फ से नहाने के लिए भी तैयार थे। तो इस प्रकार से एक इंटरव्यूज में कई बातें हमें पता चलती थी कि जो वैसे हम लोग कम सुने हैं दादियों से, लेकिन जब दादियों से बुलवाते थे तो ये विशेषता थी, दादियाँ अपना ओपनली बता देते थे उनकी अपने पुरुषार्थ की या बाबा के ने उनकी क्या परीक्षा ली। तो जैसे दादी संतरी जी की से हमने इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने बाबा दादी ने उनका दादी का संतरी नाम कैसे पढ़ा वो भी उन्होंने बताया कि जब वो ट्रांस में गए थे और ट्रांस से वापस आए तो उनका चेहरा एकदम लाल, तो बाबा ने साकर बाबा ने कहा ये तो जैसे एकदम चेहरा तो देखो इसका जैसे संतरे का जूस संतरे जैसा लग रहा है। तो बाद में उनका नाम ही संतरा संतरु संतरु बाबा बोलते थे और बाद में फीमेल के कारण उनका नाम संतरी पड़ गया। तो इस प्रकार से उनके नाम पे की विशेषता, और उन्होंने विशेष बताया कि बाबा की पद्रामणि से, मनुष्य बाबा की पद्रामणि से पहले भी साकार बाबा को वो भगवान रूप में ही महसूस करते थे कि ये भगवान है। और कभी भी यहाँ तक कि बाबा कोलकाता में थे और वो हैदराबाद में थे, लेकिन अगर कभी पेट में दर्द पड़ा है तो बाबा के चित्र के आगे बैठ के वो जैसे उनसे प्रेरणा लेते थे कि इसमें अभी मुझे क्या करना है, और जैसे उनको वो इलाज, कोई ये फकी ले लो क्या, ये कुछ करो, ऐसा महसूस होता था। और वो साकार बाबा के मन शिव बाबा की प्रवेशता से पहले भी इतना ऊंच दृष्टि से देखते थे, और उतना ही भले बहू के मनो रूप में थे, लेकिन वो अपनापन बाबा के प्रति रेस्पेक्ट बहुत उनका था। तो दादियों से इंटरव्यूज लेने में बहुत सारी चीज़ें सीखने के मिल इस प्रकार से मिली जो दादियों के क्लासेस वगैरह में नहीं आते थे।
भाई साहब, अभी जैसे अव्यक्त बाप दादा भी मधुबन में जैसे है आते नहीं है, उनके वीडियो से हम मिलन मनाते हैं, और जो नए बच्चे हैं अगर उन्हें बाप दादा की जैसे फीलिंग होती है, अनुभूति होती है, अगर वो मधुबन में आके फील करना है, क्या कोई विशेष पुरुषार्थ, या आप बाबा को मिस करते हैं भाई साहब?
देखिए, जब यज्ञ शुरू हुआ तो बाबा ने पहले साक्षात्कार कराए, साक्षात्कार करा के बच्चों को अपना बनाया, जिसके आधार पे भाई बहने घर बार छोड़ के जैसे बाबा के यज्ञ में आ गए, और स्लोली स्लोली बाबा ने उनको एक तरह से परिवार की पालना दी। और फिर बाबा ने, बाबा जब मैं बोलता हूँ जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा लग साथ में ही हैं, तो बाबा ने मीन्स शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा दोनों मिलके शिक्षाएं रूप में दिया, और शिक्षाएं दी, न केवल शिक्षाएं उनको दी, लेकिन उन्होंने ये भी सिखाया कि अगर आपको कोई एलिजाबेथ को पत्र लिखना है ज्ञान का तो कैसे लिखना है, उनको प्रैक्टिस करवाया, लिखवाया उनसे, हर एक अपना लिख किया, अगर समझो आपको कोई एलिजाबेथ को पत्र लिखना है या ये महान संत को शंकराचार्य को या इनको पत्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आपको प्रैक्टिस करो, वो प्रैक्टिस करवाई। और बाबा ने उसके बाद जब इंडिया में आ गए तो ज्ञान का विस्तार हुआ, जो ज्ञान पाकिस्तान में उन्होंने सुना उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस आए और ज्ञान का विस्तार हुआ। पहले अंगुष्ठाकार माना जाता था शिव बाबा का आकार, बाद में बिंदु रूप हुआ। तो बाबा का प्यार, बाबा के ऊपर निश्चय, किसी ने ये नहीं बोला कि बाबा आपने तो पहले ऐसे बोला बाबा शिव अंडाकार है या तो अंगुष्ठाकार है, अभी तो आप बोलते हैं बिंदु है, किसी ने भी ये नहीं कहा, क्योंकि बाबा ने उनको इतना प्यार दिया, उतना निश्चय बिठाया कि बाबा जो कहे वो सत्य वचन महाराज, या सभी ने इतना बाबा को अपनापन बना दिया था कि जो बाबा कहे मन वो सही है। तो ज्ञान में चेंजेस आए, उसको भी उन्होंने स्वीकार किया। बाबा ने ज्ञान के विस्तार को उनको समझाया, उनके द्वारा अनेकों तक पहुंचवाया। तो व्हाट आई मीन कि यज्ञ में कैसे कैसे स्टेप वाइज परिवर्तन आया है, तो उसके बाद सभी तक ज्ञान पहुंचा। आज हमारे पास जो लास्ट 4-5 वर्ष की साकार मूल्यां हैं उनको हम रिवाइज करते हैं, और उसमें बाबा का जो निजी ज्ञान है, जो फाइनल ज्ञान है, वो हमको ज्ञान के अनुसार मिलता है। उसके बाद तो जो ज्ञान का विस्तार हुआ और सब तक ज्ञान पहुंचा, लेकिन इस बीच में मैं आपको बताऊं कि बाबा की एक तरह से जादूगिरी का हो या एक ट्रिक्स का हो, जब पाकिस्तान से यहाँ आए तो बाबा ने जो कहा कि जितनी सारी डायरियां हैं उनको हम यहीं छोड़ के जाएंगे, और एक बड़ा लोहे का संदूक बड़ा बड़ा, उसमें सारे नोटबुक से सब जिन्होंने लिखे थे इतने पॉइंट्स इतने समय के, वो सब उसमें पैक करके वहाँ दबा के आ गए। तो व्हाट आई मीन टू से कि बाबा ने जब यहाँ ज्ञान का परिवर्तन किया, उसके बाद जो पुराने ज्ञान के जो लिटरेचर था वो वहीं रह गया, और उसके बाद यहाँ भी जो बीच बीच में परिवर्तन आया, तो परिवर्तन के बाद आप देखिए कि लास्ट की जो 5 सालों की मूलियाँ हैं वही संभाव हमारे पास हैं। उससे पहले बीच में जो उससे पहले की जो मूलियाँ चली, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि जो परिवर्तन आया ज्ञान का, वो कहीं भी लिखा हुआ हमारे पास नहीं है। ऑफ कोर्स कहीं हमने लिटरेचर जो पहले बाहर में बांटा गया था उन ऑफिसर्स के द्वारा ही, हम मुझे एक किताब मिला जो अजमेर में कलेक्ट्रेट ऑफिस में हमारे अंकल एक थे, उन्होंने बोला अच्छा ब्रह्म कुमारी में जाते हो वहाँ का देखो एक बुक मेरे पास है, तो उसी से हमने हमने पढ़ाया कि पहले ज्ञान किस प्रकार का था। लेकिन यज्ञ में वो लिटरेचर भी नहीं है, कहीं की रिकॉर्डिंग भी वो पहले वाला नहीं है, और दादियों में इतना परिवर्तन आया कि दादियों ने जब हमारे से बात की तो कभी ये नहीं पुराने ज्ञान की रीति से नहीं बात किया, जो फाइनल ज्ञान था वो ही उसके आधार पे हमारे से बात किया। तो ज्ञान जो फाइनल ज्ञान था उसके ही साकार मूल्यां हैं। उसके बाद जब बाप दादा अव्यक्त हुए तो जो बाप दादा ने जो ज्ञान दिया, बाप दादा ने भी हर चीज को फिर डेप्थ में जो साकार में बाबा ने कहा था उसको एक एक सब्जेक्ट पे इतना डेप्थ में हमें मूलियां चला के दादियों को हम बच्चों को समझाया एक एक टॉपिक पे, जो शुरू की वाणियां और पूरी लंबी वाणियां एक एक टॉपिक पे हैं, और बाबा ने वो अच्छी तरह से हर चीज को क्लियर किया। वो उसमें से भी कुछ हैं जो हमारे पास रिकॉर्डेड हैं, कुछ हैं जो लिटरेचर में हैं, जो अव्यक्त वाणियों की बुक्स हैं, लेकिन अभी जो हमारे पास अवेलेबल है वो वही है जो कभी कभी बाबा कहते हैं ना कि इन बच्चों ने तो जो पुराने आए उन्होंने तो मंथन किया लेकिन आपके पास मक्खन रेडी है। तो मक्खन हमारे पास चाहे वीडियोज के रूप में चाहे वाणियों के रूप में हमारे पास जैसे कि एक मक्खन है, तो अभी हम मक्खन खा रहे हैं, स्ट्रांग हैं अपने आप में, तो हमें ये पुरानी बातों को या पुराने ज्ञान को समझने की आवश्यकता भी नहीं है, और हम उस मक्खन को खा के अपने को तंदुरुस्त भी कर रहे हैं। और स्लोली बाबा ने हमें ज्ञान के हिसाब से समझाया अच्छी तरह हर टॉपिक, अवेक बाप दादा ने भी बाद में एक एक को प्यार से पालना भी दी, और स्लोली स्लोली उन्होंने उस चीज को भी फेड आउट किया, इन द सेंस बाबा कम आना शुरू किया, बाद में पर्सनल मिलने का बजाय ग्रुप में मिलना शुरू किया, बाप दादा ने बाद में दृष्टि से इतने अच्छे अनुभव कराना शुरू किया, और जिस समय जितना जितना आवश्यक था या जितना संबंध में माना आवश्यकता थी तो प्यार भी दिया, लेकिन बाबा ने जैसे हमको साकार बातों से या साकार विधि रीति रस्मों से हमें दूर ऊंचा भी उठाया, क्योंकि कभी कभी एक ऐसा भी समय आ गया था कि जैसे हम भक्ति में रिचुअल्स की तरीके से हम भाई सत्संग किया और प्रसाद खाया और अपने में लगे, कोई ऐसा भी समय आया कि हमको लगता था बाबा आएंगे मूली चलाएंगे हम सुनेंगे हम घर को जाएंगे फिर अपना इतना इतना पुरुषार्थ करेंगे फिर अगली बार फिर आएंगे, तो ऐसा एक तरह ऐसा लगने लगा कि जैसे हमारा एक रीति रस्म या रिवाज या तो एक तरह सिस्टम ऐसा हो गया है जैसे हम भक्ति करते हैं रिचुअल्स के अनुसार हम वैसे कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने हमें धीरे धीरे हमको उन चीज़ों से ऊंचा उठाया कि बाबा कभी आए प्यार से दिया, जो नए आए उनको अप्रिशिएट किया, उनको देन अगेन मेरा बाबा मीठा बाबा तक लेके आए, और धीरे धीरे फिर बाबा कभी आए कभी नहीं आए, तो धीरे धीरे बाबा ने हमें अपने पांवों पे खड़ा किया, जो अगर शब्दों में कहेंगे तो हमें निराधार बनाया कि हम साकार पालना का पे डिपेंड नहीं करें और अव्यक्ति पालना में आते जाएं। हम थोड़े दिनों से हम 2008 की 7-8 की मूलियों के जो क्लिप्स हैं वो देख रहे हैं, तो बाबा ने यही कहा है कि एक सेकेंड में अंतःभाग शरीर, एक सेकेंड में निराकारी, ना 5 स्वरूपों का भी अनुभव बाबा ने कराया, अभी थोड़ी देर पहले गीता दीदी भी वो करवा रहे थे, तो उस प्रकार से बाबा ने हमें नेगेटिव को, व्यर्थ को दूर रखने और ज्ञान की परफेक्शन में जाने के लिए कई विधियां अपनाई, अपनाने के लिए बोला और पूरा सपोर्ट किया। आज साकार अवेक बाबा की मूल्यों को भी अगर हम पढ़ें, रोज एक मूल्य पढ़ें तो जीवन बीत जाएगा, इतना तक मूल्यां हैं हमारे पास बुक्स में, तो और उनसे धारणा करें तो हमको ये नहीं लगता कि अब हमें वो साकार पालना की आवश्यकता है। अब हमें निराधार मीन्स जिसको अव्यक्त शब्द बोला गया है, वो रियल जो अव्यक्त शब्द है मीन्स व्यक्त से परे, वो हमें रूप धारण मानो वो अनुभूतियां हमें करनी है और औरों को भी करानी है, क्योंकि हमारे ज्ञान का सार यही है। जब हम आए थे तो एक योग के ऊपर एग्जीबिशन था, जैसे ज्ञान के विषय निर्माण एग्जीबिशन है, ऐसे योग के ऊपर एक एग्जीबिशन था। उसमें यहाँ तक बताया जाता था कि साकार से तो दूर जाना ही है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु शंकर जो अव्यक्त रूप हैं, उनसे भी पार हमें निराकार स्थिति में जाना है, तब जाके हम कहेंगे कि हम हमारा प्रॉपर योग है, जो संपूर्ण योग है वो उसको कहेंगे। तो धीरे धीरे हम साकारी बातों से, साकारी व्यक्तियों से, साकार लोक की आवश्यकताओं से, इच्छाओं से, अपेक्षाओं से, आकांक्षाओं से अपने को डिटैच करते करते अव्यक्त रूप में हम अनुभव करें स्वयं को और औरों को भी कराएं, वो अनुभूतियाँ करते करते हम निराकारी रूप को धारण करें, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि अब समय जो है और बातों में जाने का नहीं है।
थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच।